संख्या 191, क्रांति के संदर्भ में सुन की योजना में स्वतंत्र कराए गए क्षेत्रों में 3 साल तक सैन्य शासन की व्यवस्था थी। इस दौरान सेना संपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रशासन को अपने नियंत्रण में रखेगी। यह प्रशासन जिला स्तर का होगा और स्थानीय लोगों के साथ सहयोग करके पुरानी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें दास प्रथा, खाने की कमी, अफीम का प्रयोग और प्रशासन में नौकरशाहों द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार आदि शामिल थे, का अंत करेगा। दूसरा दौर प्रबुद्ध तानाशाही का काल, पीरियड ऑफ एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म होगा। इस दौर की अवधि 6 वर्षों से अधिक नहीं होगी, जिस दौरान स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो जाएगी। स्थानीय सभाओं और निकायों का चुनाव भी हो जाएगा, जबकि केंद्रीय शासन पर सेना का नियंत्रण ही बना रहेगा। इस अवधि के दौरान अस्थायी संविधान, सामान्य जनता और सैन्य सरकार के अधिकारों एवं कर्तव्यों की विस्तृत विवेचना करेगा। निरीक्षण काल की समाप्ति के बाद सैन्य सरकार नए संविधान के द्वारा संचालित होगी और संविधान में लागू किए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कराए जाएंगे। इस तरह सून ने क्रांति से संबंधित 3 चरणों के द्वारा देश में संविधानवाद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने का प्रावधान किया। नए गणतंत्र के तहत मंगोलिया, तिब्बत और सिनचियांग ने अर्ध स्वायत्त राज्य का दर्जा हासिल किया, जिससे राजनीतिक विघटन की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई। पर सुन ने सभी जातीय समूहों के लिए विस्तृत राजनीतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समानता की नीति अपनाई। संघीय सरकार का प्रारूप अपनाते समय उन्होंने शक्ति के विकेंद्रीयकरण की नीति स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर अपनाई। सुन का तीसरा जन आजीविका का सिद्धांत एक तरह से समाजवाद का सिद्धांत था। इस सिद्धांत के तहत सुन ने 2 मुद्दों पर अत्यधिक जोर दिया, जमीन का समान वितरण और पूंजी पर नियंत्रण का प्रावधान। इसमें हम स्पष्ट रूप से प्राचीन चीनी विचार, जो जोते उसी की जमीन, लैंड टू द टीलर और थाइपिंग आंदोलन के भूमि सुधार कार्यक्रम का स्पष्ट प्रभाव पाते हैं। उनके अनुसार सबसे पहले वितरण का ध्यान छोड़कर उत्पादन के बारे में सोचना चाहिए। चीन एक कृषि प्रधान देश था, जहां सुन ने जमीन के समान वितरण की बात की। इसके पीछे उनका उद्देश्य जमीन पर से अल्पसंख्यकों के एकाधिकार को समाप्त करना था। वह चाहते थे कि ग्रामीण खेतिहरों और शहरी क्षेत्रों के निवासियों में भूमि का समान रूप से वितरण हो, पर उनकी यह भी इच्छा थी कि इस प्रक्रिया को लागू करने में शांतिपूर्ण उपायों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सरकार द्वारा भूमिपतियों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान भी किया, जिनकी जमीन सामान्य जनता के उपयोग के लिए अथवा पुनर्वितरण के लिए हथिया ली गई थी। उनके विचार में जमीन पर लगाकर जमीन की कीमत के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। इस तरह से आर्थिक समानता का विचार सुन के सिद्धांत का मौलिक तत्व था, जिसे उन्होंने अपने 3 जन सिद्धांतों में प्रतिपादित किया था। वह भूमिपतियों, व्यवसायियों और पूंजीपतियों द्वारा जमा किए गए धन और शक्ति की एकाग्रता के विरुद्ध थे, क्योंकि इसके कारण क्रांति और वर्गीय संघर्ष उत्पन्न हो सकते थे। सुन के भूमि संबंधी सिद्धांत ने सबसे पहले भूमि का सही तथा स्वतः मूल्यांकन करने का प्रावधान किया और इसके बाद जमीन के महत्व के हिसाब से उस पर करारोपण की व्यवस्था की। फिर सरकार द्वारा ही निर्धारित अंकित कीमत पर सरकार को जमीन खरीदने का अधिकार था। साथ ही जमीन के मूल्यों में उतार चढ़ाव या फिर कभी कभी उनके असीमित हो जाने पर सीधे सरकार के पास मामले भेजे जाने का प्रावधान रखा गया, जबकि निवेश के कारण हुई किसी भी मूल्य वृद्धि में मालिकों को हक दिया गया। कर और बिना कमाई हुई आय पर मिले राजस्व पर सरकार के वित्तीय संसाधनों और उपक्रमों का अधिकार माना गया। निजी एकाधिकार प्राप्त क्षेत्रों को अतिरिक्त राजस्व प्रदान किए जाने के प्रावधान का भी सुन ने समर्थन किया और प्राप्त अतिरिक्त पूंजी पर अतिरिक्त कर की भी व्यवस्था की गई। परिणाम स्वरूप भूमिपतियों से ली जाने वाली जमीन का हस्तांतरण अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और इसे किसानों में वितरित कर दिया गया। सुन ने वितरण के इस पूरे मामले के संदर्भ में भूमिपतियों से सहायता करने की अपील की। चीन को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए सुन ने कृषि और उद्योगों के सम्मिलित विकास पर अधिक ध्यान दिया। उनके अनुसार राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व अर्थव्यवस्था का विकास करना था। उनकी योजना मानव शक्ति, कृषि निर्माण और व्यापार के सम्मिलित सहयोग से आगे बढ़ने की थी। मानव शक्ति के विकास में उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया और शिक्षा को काम के साथ साथ प्रशिक्षण से भी जोड़ दिया। कृषिगत विकास के संदर्भ में उन्होंने बाढ़ नियंत्रण, जल स्रोतों को जमा करने, भूमि सुधार और उन्नत तकनीकी व्यवस्था को प्रोत्साहन करने का प्रयास किया। निर्माण के क्षेत्र में उन्होंने स्रोतों के बचाव और नई मशीनों के उपयोग पर ध्यान दिया, जबकि व्यापार के क्षेत्र में उन्होंने आंतरिक व्यापार संबंधी रुकावटों की समाप्ति, व्यापारियों को संरक्षण प्रदान करने और यातायात के साधनों को विकसित करने पर जोर दिया। चीन की आंतरिक विकास के संदर्भ में उनकी योजना मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर 6 क्षेत्रों, बंदरगाह, रेल, सड़क, नहर, खान और उद्योगों के विकास से संबंधित थी। सुन के इस विकासवादी कार्यक्रम ने संतुलित विकास, बैलेंस्ड ग्रोथ और विशाल प्रोत्साहन जैसे सिद्धांतों की ओर ध्यान दिलाया। इसके साथ साथ उन्होंने समान रूप में विकास पर जोर दिया। सुन ने पूंजी और उद्योग पर राज्य के नियंत्रण के सिद्धांत पर भी जोर दिया। वह निजी पूंजी को कम करना चाहते थे और सामान्य जनता की आजीविका के साधनों को प्रचुर मात्रा में विकसित करना चाहते थे, जिसमें निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण जैसे बैंक, रेल, सड़क और जहाज एवं बंदरगाह निर्माण योजना शामिल थी। साथ ही उन्होंने छोटे निजी उद्योगों के अस्तित्व को भी बढ़ावा दिया। उन्हें यह भी एहसास था कि चीन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में असक्षम था, जिससे बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश संभव नहीं था, ताकि नए उद्योग का विकास किया जा सके। इस तरह वह विदेशी पूंजी के आगमन के महत्व को भी महसूस करते थे, जिससे चीन की औद्योगिक प्रगति के लिए विदेशी तकनीकी व्यवस्था भी शामिल थी। उन्होंने चीन के बहुमुखी विकास के लिए तकनीकी प्रणालियों के प्रयोग को पसंद किया। उन्होंने चीन की बढ़ती हुई आबादी की इच्छा पूर्ति के लिए विदेशी तकनीक से जमीन की उत्पादकता बढ़ाने की तरकीब का स्वागत किया।